शांति। आप सभी का क्लास कराएंगी आदरणीय उर्मिला बहन जी। आप 25 वर्षों से ज्ञान में चल रही हैं, 20 वर्षों से आपने अपना संपूर्ण जीवन बाबा की सेवा में समर्पित किया है, 6 वर्ष से आप इस शांतिवन में रह रही हैं, साथ ही आप ज्ञान अमृत और हरियाली पत्रिका की सह संपादिका हैं ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन जी।
ओम शांति। आज की इस क्लास की जो टॉपिक है वो है आत्मा अपना मित्र। आज प्यारे बाबा ने जो मुरली सुनाई उसमें भी कितने ही पॉइंट्स दिए जिनसे हमको ये एहसास हुआ कि उनको अगर हम जीवन में धारण करें तो हम अपने मित्र सिद्ध हो सकते हैं। वैसे भी मित्र शब्द का अर्थ होता है कि जो अपने मित्र के बारे में कल्याण की बातें सोचे, कल्याण का मार्ग उसको दिखाए। तो जो आत्मा स्वयं के कल्याण की बातें और विश्व के कल्याण की बातों का चिंतन करती है उसी को हम कहेंगे कि वो स्वयं की मित्र है। अपने को सन्मार्ग पर चलाना, श्रीमत के मार्ग पर चलाना, इसको कहेंगे अपने आप का मित्र बनना। गीता का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु आप है। जब वह विकर्मों और विकारों में फंसती है तो अपना शत्रु बन जाती है, और जब महान कर्मों में प्रवृत्त होती है, महान विचारों की ओर अग्रसर होती है तो अपना मित्र बन जाती है। और इसी संबंध में हम कहती हैं कि आत्मा ही महान आत्मा, देव आत्मा और पाप आत्मा बनती है। आत्मा के अंदर जो विचार पैदा होते हैं वो शरीर के माध्यम से प्रकट होती हैं, लेकिन पैदा आत्मा में होते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे। हम एक उदाहरण लेते हैं। एक बहुत सुंदर मकान है और 3 मनुष्य आत्माएं उस मकान को देखती हैं। पहली मनुष्य आत्मा सोचती है कि इस व्यक्ति के पूर्वज बहुत अमीर थे जिन्होंने इसको ये इतना सुंदर मकान बना करके दिया, ये बहुत भाग्य वाला है, पूर्वजों से इसे इतनी अच्छी प्रॉपर्टी मिली। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति इतना अच्छा मकान नहीं बना सकता, जरूर इसने कोई गलत कार्य किया होगा, धोखा बेईमानी की होगी जिससे इसको ये मकान मिला है। और तीसरा व्यक्ति सोचता है उसी को देख करके कि ये मकान तो बहुत सुंदर है, इसमें लगता है चीजें भी बहुत होंगी, तो मैं कोशिश करूंगा, कुछ लोगों को लाऊंगा और इस मकान में रात को कुछ सेंध लगाने की कोशिश करूंगा। अब एक ही चीज है और तीन आत्माएं आंखों के द्वारा उसको देख रही हैं, लेकिन तीनों के विचार भिन्न भिन्न हैं। पहली आत्मा को क्या कहेंगे? श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, वो अपना मित्र है। दूसरी आत्मा को क्या कहेंगे? ना अपना मित्र ना अपना शत्रु, साधारण आत्मा है। और तीसरी आत्मा को क्या कहेंगे? अपना शत्रु, क्योंकि वो ऐसे कर्म का चिंतन कर रही है जिसका कई गुना खामियाजा उसको देना पड़ेगा। तो जिम्मेवार कौन? आत्मा स्वयं जिम्मेवार है, किसी दूसरे ने उसको जिम्मेवार नहीं बनाया। एक बार एक नौजवान ने शरीर छोड़ दिया किसी एक्सीडेंट में, और कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने उसकी आंखें तुरंत मौके पर पहुंच करके आई बैंक को दान करवा दी। और आई बैंक से वो आंखें किसी एक ऐसे संत को लग गई जो जन्म से अंधा था। तो जब वो आंखें उस नौजवान के जीवित होते हुए उसके शरीर में थी तो कोई भी उसके सामने जाने की कोशिश नहीं करता था, हर एक व्यक्ति बचता था उससे, क्योंकि बहुत क्रोधी था वो। कहता था इसकी आंखों के सामने जाते ही डर लगता है, ऐसे लगता है जैसे आग बरस रही है, बहुत मुश्किल से लोग उसकी दृष्टि के सामने खड़े होते थे। लेकिन वही आंखें आई बैंक वालों ने एक संत को दे दी और वो उस जन्मांध संत को मिल गई तो वो देखने लगा। अब लोग उस जन्मांध संत के सामने जाते हैं, खुशी से जाते हैं, और उन्हीं आंखों के सामने खड़े होके क्या कहते हैं? निहाल हो गए हम तो, इतनी शांति मिल रही है, इतना सुख मिल रहा है, इतनी खुशी मिल रही है। अरे भाई, संत जी के सामने आओ, दृष्टि लो। आंखें तो वही हैं, लेकिन अंतर किस बात का है? पहले जो उनका प्रयोग कर रही थी वो आत्मा अपने आप का शत्रु थी, और वो शत्रुता उसकी आंखों से बाहर टपकती थी। जब हम पहले अपने शत्रु बनते हैं तो दूसरों तक भी वो शत्रुता पहुंचती है। और संत अपने आप का मित्र था, और उसका वो मित्र भाव उन्हीं आंखों से सामने आने वाली आत्माओं को महसूस होता था। इसलिए ये नहीं कहा गया कि शरीर मित्र है या शरीर शत्रु है, आंख मित्र है या आंख शत्रु है। भले व्यक्ति हाथ से भी गलत कर्म करे या पुण्य कर्म करे तो भी हम कभी हाथ को मित्र नहीं कहते, शरीर की किसी भी इंद्रिय को मित्र या शत्रु नहीं कहते, लेकिन आत्मा को मित्र और शत्रु कहते हैं। क्योंकि कर्म करने का जो मूल आधार है, जो बीज है, वो आत्मा से ही उत्पन्न होता है। जितने भी विकार हैं या जितने भी सद्गुण हैं, पहले पहले आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, और तकलीफ भी आत्मा को ही देते हैं। तो आत्मा मित्रता भी उत्पन्न कर सकती है और शत्रुता भी उत्पन्न कर सकती है। प्यारे बाबा ने हमको ज्ञान दे करके अपने आप का मित्र बनने का बहुत सुंदर तरीका बताया। बाबा कहते हैं, बच्ची जैसे आज भी मुरली में था, कि जितना जितना आप आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, उतना ही आप अपने आप के मित्र हैं। जितना आप आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, सारे गुण और शक्तियां आपके सामने जी हाजिर जी हजूर करते हैं। जितना आप आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, ये सबसे बड़ी साधना और सबसे बड़ी तपस्या है। और जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है, उसके ऊपर या उसके द्वारा स्वप्न में भी विकर्म हो ही नहीं सकता। तो ये एक प्रकार का कवच है जिसके ऊपर विकार विकर्म वार नहीं कर सकते, उसको भेद नहीं सकते और आत्मा को नुकसान पहुंचा नहीं सकते। इसलिए प्यारे बाबा ने हमें तीन बहुत सुंदर बातें सुनाई। पहली बात, बच्चे देहातीत बनो। दूसरी बात, संसारातीत बनो। और तीसरी बात, इंद्रियातीत बनो। जो इन तीन चीजों से अतीत है वो स्वयं का पक्का मित्र है। देहातीत, इसी को हम कहते हैं देह अभिमान से मुक्त। जो देहातीत बनेगा वही कर्मातीत भी बनेगा। अगर हम इस देह की वास्तविकता को देखें तो एक तो हम कहते हैं मोटे रूप में कि ये पांच तत्वों का बना हुआ है, जड़ है। इससे भी अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो विज्ञान ये कहता है कि संसार की हर चीज अणु और परमाणुओं से मिलकर के बनी है। जैसे आजकल कंप्यूटर चित्र बनाता है, आप उसको अगर ध्यान से देखें तो उसमें केवल डॉट डॉट होती है, छोटे छोटे बिंदु होते हैं। छोटे छोटे बिंदुओं से ही आंख बन जाती है, मुख बन जाता है, सब कुछ। थोड़ा डार्क बिंदु होगा, थोड़ा लाइट बिंदु होगा, लेकिन होते छोटे छोटे बिंदु हैं। इसी प्रकार से शरीर छोटे छोटे अणु और परमाणुओं का समूह है। अगर इसको सूक्ष्म दर्शी से देखा जाए तो अणु और परमाणुओं का हम एहसास कर सकते हैं। उन सब का ये संघट है, समूह है, उन सब से मिलकर के बना है। और वो टूटते रहती हैं, कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, जो मर जाती हैं वो शरीर से निकल जाती हैं, नई ऐड होती जाती हैं। इस प्रकार से टूटने और जुड़ने की ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो जैसे वो चित्र बिंदुओं से बनता है, वो भी जड़ हैं, बिंदु भी जड़ हैं, और ऐसे ही अणु और परमाणु भी जड़ हैं, प्रकृति कृत हैं। और उस जड़ कवर में मैं आत्मा विराजमान हूं। जब मैं आत्मा परम धाम में थी तो कैसी थी? एकदम फुल मून जैसी थी, जैसे संपूर्ण चंद्रमा। जब बरसात होती है तो चंद्रमा के चारों ओर एक ओरा आ जाता है, घेरा आ जाता है, बरसात के बाद जब चंद्रमा दिखाई देता है। और ऐसे ही सूर्य के चारों ओर भी एक घेरा होता है, प्रकाश का दिखता है जब हम सूर्य को देखते हैं। तो मैं आत्मा हूं तो वास्तव में वैसी प्रकाश हूं, और उस प्रकाश के चारों ओर भी प्रकाश है, जो उसका ओरा है, जो उसका घेरा है, और वो मैं आत्मा इस कर्म रूपी डाली पर, जैसे पंछी उड़ता उड़ता डाली पर आके बैठता है, डाली पर कुछ होता है, वो खाता है और उसके बाद उड़ जाता है, तो मैं आत्मा परम धाम को छोड़ करके इस शरीर रूपी डाली पर आके बैठी और इससे मैंने कर्म किया चुगा चुगा और उसके बाद फिर वापस अपने देश को उड़ गई। तो अगर ये मेरी मनोवृत्ति है, मनोस्थिति है कि मैं हूं तो वहां की रहवासी और यहां केवल डाली पर बैठने के लिए आती हूं, और डाली भी ऐसी है जब चाहूं छोड़ सकती हूं, जब चाहूं उससे उड़ सकती हूं, तो ये मेरी देहातीत स्थिति है। जैसे लूज कपड़ा होता है, जब चाहा निकाल दिया और जब चाहा पहन लिया, तो ये इतनी लूज ड्रेस है मेरी, जब चाहा आत्मा ने इसको ओढ़ लिया, इस आवरण को, परमाणु और अणु से बने इस आवरण को, और जब चाहा इस आवरण को उतार दिया और फिर अपने गंतव्य की ओर चली गई। लक्ष्य तो उसका कर्मातीत बनना है, देहातीत होना है, सब बंधनों से मुक्त। तो अगर ये स्थिति है तो आत्मा अपना मित्र है, हर पल उसका जमा है, हर पल उसका दिव्य अनुभूतियों से भरपूर है। दूसरा बाबा ने कहा संसारातीत स्थिति। संसार में वस्तु और वैभव, ये बाबा ने कहा खिलौने हैं। जैसे बच्चा मन बहलाने के लिए थोड़ा मिट्टी के खिलौनों से खेलता है, लेकिन उसको मालूम है कि आवाज आएगी और मुझे घर जाना है, तो ऐसे ही संसार के जितने भी पदार्थ हैं, खिलौने हैं जिनसे हम खेल रहे हैं, लेकिन समय आएगा और सब खिलौनों को छोड़ करके हमको जाना है। तो वस्तु और वैभव मुझ आत्मा की प्रॉपर्टी नहीं है, मैं उनकी मालिक नहीं हूं, मैं गुणों की मालिक हूं, शक्तियों की मालिक हूं, ज्ञान की मालिक हूं। बाबा से मुझे जो श्रेष्ठ मत मिली है मैं उसकी मालिक हूं, वस्तु और पदार्थ की मैं मालिक नहीं हूं। वैसे भी संसार में कोई किसी चीज का मालिक बन नहीं सकता। भक्ति में कहते हैं सबई भूमि गोपाल की, सब कुछ भगवान का है। जब तक व्यक्ति इस कवर में है, कागजों में उसका नाम है, और कवर छूटने के बाद ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर हो जाती है जो भी चीज है, तो कवर तक उसका रिश्ता है। आत्मा तो ना पहले मालिक थी और ना कवर छूटने के बाद मालिक है। रामायण हम सब ने पढ़ी है और उसमें बाबा मुरली में भी एग्जाम्पल देते हैं सीता का, लक्ष्मण रेखा का। अगर लक्ष्मण रेखा को पार किया तो बाबा कहते हैं रावण उठा ले जाएगा। अगर हम रामायण को थोड़ा और गहराई से देखें तो सीता हम आत्माओं की प्रतीक है और राम निराकार शिव बाबा हैं। अब सीता को दिखाते हैं कि वो राजा की बेटी थी और आगे जहां उसको घर मिला, वो भी राजाई परिवार था। लेकिन जब वनवास की बात आई तो उस आत्मा ने खुशी खुशी दोनों कुलों के वैभव का त्याग कर दिया। उसने कहा कि मेरे लिए भगवान ही सब कुछ है, अगर भगवान नहीं तो वैभव किस काम का। जहां भगवान है वहीं सुख है, वहीं आनंद है, वहीं वैभव है, वहीं जीवन की शांति है। इसलिए मैं भगवान का साथ नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी लेकिन भगवान को नहीं छोड़ूंगी। और ऐसी प्रतिज्ञा के साथ वो भगवान के साथ जंगल में चली गई। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्ची जब तक संगम युग है तब तक परीक्षाएं आती रहेंगी, जब तक आपकी राजधानी स्थापित नहीं हो जाती तब तक माया अलग अलग रूपों में आकर के आपको बरगलाने की, बहलाने की, फुसलाने की कोशिश करेगी। तो इतनी त्यागवान आत्मा को भी जंगल में जाकर के माया बहलाने फुसलाने आ गई। किस रूप में आई, किस रूप में आई? सोने के हिरण के रूप में आई। जिसने इतना सब त्याग दिया, सोने का महल त्याग दिया, सोने की राजगद्दी त्याग दी, सोने के गहने त्याग दिए, सोने की राजधानी त्याग दी, लेकिन उसके आगे माया किस रूप में आई? और कुछ दिन बीतने के बाद आई, सोने का हिरण बन करके ही आई। और आत्मा उस सोने के हिरण का जो सौंदर्य था, जो चकाचौंध थी, झूठा था वो, उसमें फंस गई। और फंस करके उसने क्या कहा कि मुझे भगवान नहीं लेकिन सोने का हिरण चाहिए। भगवान को भी कहा भले चले जाओ लेकिन मुझे क्या चाहिए। तो ये माया बुद्धि पर पर्दा डालती है। हम इतना त्याग कर देते हैं, बाबा के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का, संबंध भी बाबा के, श्वास और संकल्प भी बाबा के, और त्यागने में हम भी चुटकी भर भी देरी नहीं लगाते। लेकिन क्योंकि थोड़ा समय का अंतराल है तो माया देखती है कि अभी तो इसको वैराग है, इसलिए इसने त्याग दिया, अब थोड़े दिन के बाद जाकर के इसको उंगली लगाऊंगी और देखूंगी कि उस समय इसकी क्या स्थिति है। तो वो बार बार उंगली लगाने आती है और थोड़ी भी कमजोरी देखती है तो समझ जाती है कि हाँ मेरे लिए मौका है, वो इसी रूप में आती है। तो जब इतना त्याग किया तब तो हमको कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर छोटी सी चीज का आकर्षण भगवान से दूर कर देता है। तो भगवान तो जानी जानन हार है, दयालु है, रहम दिल है, अपने बच्चे की हर स्थिति को जानता है। तो जब भगवान ने देखा उस समय हस्तक्षेप नहीं करता, क्यों? क्योंकि उस समय बच्चे की बुद्धि के आगे या बच्चे की बुद्धि में बाबा की बात को कैच करने की ताकत ही नहीं है। बुद्धि का ताला माया के उस रूप ने बंद कर दिया होता है। तो भगवान ने उसको क्या कहा, हे आत्मा अगर तेरे को सोना इतना ही प्यारा है तो तू सोने की दुनिया में ही चली जा। और आत्मा कहां चली गई? सोने की दुनिया में चली गई, भगवान को छोड़ करके। सारी लंका दिखाते हैं सोने की थी, लेकिन सोने की दुनिया में जाकर के भी आत्मा को चैन मिला क्या, सुख मिला क्या? अब सोने की दुनिया में जाके कौन याद आया? फिर भगवान याद आया, भगवान मुझे बचा, भगवान मुझे छुड़ा, भगवान मेरी शुद्ध ले, भगवान 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 भगवान, रोती रही। दिखाते हैं ना, तो जब सोना मिल जाता है और उस सोने से दुख मिलता है, फिर भगवान याद आता है। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे संसारातीत बनो। संसार की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो 2 पैसे की हो, चाहे 2 लाख की हो, सोने के हिरण तुल्य लुभावनी तो हैं, लेकिन सुख देने वाली नहीं है। इसलिए उन चीजों के आकर्षण में आकर के भगवान को मत भूलो। उन चीजों के प्रलोभन में आकर के अपनी साधना को मत छोड़ो। उन चीजों के आकर्षण में आकर के अपने सद्गुणों को तिलांजलि मत दो, क्योंकि आपको काम आने वाला बाबा ही है, सद्गुण ही है और साधना ही है। बाकी साधन तो टेम्परेरी है, साधना को बढ़ाने के लिए, गुणों को बढ़ाने के लिए है, लेकिन सुख देने वाले वो नहीं है। इसलिए जो आत्मा अपना मित्र बनना चाहती है, वो वस्तु पदार्थ वैभव उसको देखेगी भी, हो सकता है छू भी दे, लेकिन उसका मन उसको नहीं छुएगा, उसका मन न्यारा रहेगा। देखने से पहले ही मन बोल देगा कि नहीं, ये किसी काम की चीज नहीं है। इसको देखने में मैं 2-4 संकल्प खराब करूं, ये मैं नहीं कर सकता। इतने कीमती संकल्प और इन नष्ट होने वाली चीजों के लिए मैं खराब करूं? नहीं नहीं, ठीक है। लोक संग्रह अर्थ या लोक निभावन अर्थ वो भले किसी चीज को देख ले, लेकिन अंदर से वो डिटैच रहेगा। तो ये संसारातीत अवस्था हम ब्राह्मण बच्चों की चाहिए। ना कपड़े में, ना वस्तु में, ना पैसे में, ना चीजों में, किसी में भी मन अटकता ही नहीं है। सब अटक खत्म हो गई, मन का रास्ता साफ है, उसे परमधाम दिखाई देता है, वैभव उसे सतयुग का दिखाई देता है, जो लंबा चलने वाला है, सुखदायी है, क्योंकि वो तो पवित्र प्रकृति का वैभव है और हमारी साधना का फल है, इसलिए वो सुखदाई है। वो तो ईश्वर पिता का वर्षा है, इसलिए सुखदाई है। और फिर बाबा ने कहा, इंद्रियातीत, शरीरातीत और इंद्रियातीत, आत्म अभिमानी स्थिति, उसके साथ साथ इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण की स्थिति, क्योंकि ये भी गुपचुप तरीके से धोखा देती है, अभ्यास है इनको धोखा देने का, खींचती है आत्मा को अपनी तरफ। इसलिए शास्त्रों में स्वर्ग का राजा इंद्र माना गया है। इंद्र माना जिसने इंद्रियों को नियंत्रित किया। तो बाबा कहते हैं, आप बच्चे स्वर्ग के राजा बनने वाले हैं, तो सच्चे अर्थों में इंद्र कौन हुए? हम बाबा के बच्चे सच्चे अर्थों में इंद्र हुए। और इंद्रियातीत बनने की प्रैक्टिस हमको अभी इसी जन्म में करनी है, इस छोटे से समय में करनी है, थोड़े से समय में। मृत्यु के बाद व्यक्ति शरीर भले छोड़ देता है, इंद्रियों से न्यारी हो जाती है आत्मा, लेकिन अगर संस्कार उसके नहीं छूटे तो अगला शरीर लेते ही फिर इंद्रियां वही कर्म करेंगी। लेकिन अगर हम उस संस्कार से मुक्त हो गए तो फिर जब अगला शरीर मिलेगा तो कोई संस्कार हमें खींचेगा नहीं। दुनिया में शिक्षा देने के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक ग्रंथों में आता है कि छोटे छोटे 5 जीव हैं, जो एक एक इंद्री के गुलाम होने के कारण अपने शरीर का नाश कर देते हैं। उसमें सबसे पहला उदाहरण लेती हैं पतंगे का। जब बरसात होती है तो लाइट को देख करके पंखों वाले छोटे छोटे जीव निकलते हैं। अब उस जीव के पास आंख तो है, लेकिन विवेक की आंख नहीं है, ज्ञान की आंख नहीं है, चिंतन की आंख नहीं है। तो आंख देखती है प्रकाश को, आंख कहती है ये प्रकाश बहुत सुंदर है, चलो इसके पास चलते हैं। और केवल आंख प्रकाश को देख करके क्षमा पड़ जाती है और क्या होता है पतंगे का विनाश हो जाता है। एक ही इंद्री के अधीन हुआ वो जीव अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। अब अगर मनुष्य भी ऐसा करे, आंख से चीज देखी, आंख से सुंदर शरीर देखा, आंख से सुंदर वस्तु देखी और योग में बैठा और वो शरीर और वो वस्तु याद आई, मान लीजिए, तो क्या उस व्यक्ति को हम उस पतंगे से अच्छी स्थिति में कहेंगे? वो बिना बुद्धि का जीव भी वही काम कर रहा है और एक बुद्धिवान मनुष्य ज्ञानी होकर के भी वही काम कर रहा है। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे आपके पास तीसरा नेत्र है, आप तीसरे नेत्र से देखो, इन आंख से मत देखो। इसी प्रकार से एक छोटा जीव भंवरा, भंवरे को खुशबू आती है और नाक की खुशबू के अधीन हुआ वो एक कमलिनी करके पुष्प होता है, उसमें घुस जाता है, उसका मकरंद खूब चूसता है, चूसते चूसते शाम हो जाती है। और कमलिनी फूल की विशेषता है कि जब सूर्य छिप जाता है तो उसके पत्ते बंद हो जाते हैं। भंवरा अंदर है, वो नाक के इतना अधीन है कि उसे समय का एहसास नहीं, चारों ओर क्या हो रहा है उस वातावरण का एहसास नहीं। और कमलिनी के पत्ते बंद हो जाती हैं, भंवरा अंदर ही मकरंद चुस्ता चुस्ता नष्ट हो जाता है, क्योंकि अंदर हवा नहीं जाएगी तो जीव का क्या होगा। अब वो तो केवल नाक के अधीन है। मनुष्य भी क्या करता है, बीमार हो मान लीजिए या जुकाम हुआ है और आइसक्रीम देख ली, खुशबू आई आइसक्रीम की, पकोड़े की खुशबू आई और खा लिया, पेट अलाउ नहीं कर रहा है फिर भी खा लिया, तो क्या कहेंगे, भंवरे से अच्छी स्थिति है उसकी? इसलिए बाबा ने कहा, बच्ची अपनी इंद्रियों के ऊपर ज्ञान का अंकुश रखो। दुनिया में देखो, ऊंट को या घोड़े को बांधना होता है तो नकेल कहाँ डालते हैं? नाक में ही डालते हैं ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये इंद्री अंकुश में रहे, तो मनुष्य के लिए ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हमारे पास ज्ञान रूपी नकेल तो है, उसको अगर हम यूज करें, वो नकेल डाल करके रखें कि चाहे कैसे भी खुशबू आए लेकिन मुझे विवेक का प्रयोग करना है, मुझे ये चीज खानी है या नहीं खानी है। एक भाई ने हमको पत्र लिखा कि एक बार कहीं प्रदर्शनी लगी थी और मैं उस प्रदर्शनी में गया और मुझे बहुत जुकाम था, तो बाजू में ही एक आइसक्रीम के ठेले वाला आया तो किसी ने कहा ये तो मशीन मेड है, मशीन मेड है, खा लो। ये मशीन मेड भी आदमी को बहुत भ्रम में डालती है अब एक आइसक्रीम खा ली, बहुत टेस्टी लगी, फिर दूसरी भी खा ली। पहले तो नाक बंद थी, फिर गला भी बंद हो गया। घर में आया तो रात को दो रजाई ओढ़ के सोया। उसके बाद सुबह उठा तो सब कुछ बंद। डॉक्टर के पास गया, उसने इंजेक्शन लगाया, दवाइयाँ दी, और उसके बाद दो दिन तक दवाई खाता रहा तो 300 रुपए का बिल बना। थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर बाजार में निकला तो फिर आइसक्रीम दिख गई। फिर मेरा जी ललचाया कि तो बहुत टेस्टी है। फिर मैंने अपने मन को समझाया कि पहले तो तू डॉक्टर को 300 रुपए देकर के आया, और अभी तो पूरा ठीक भी नहीं हुआ, अगर अब दोबारा खा लिया तो पता नहीं बिल 600 का भी आ सकता है। अब अगर हम अपने मन को मजबूत नहीं बनाते हैं, समझाते नहीं है, तो आइसक्रीम हमारी शत्रु है या मन हमारा शत्रु है? चीजें तो दुनिया में है ही और रहेंगी ही। हम कहें भाई ये ठेले वाला यहां से ना जाता, ये यहां से कहीं दूर चला जाए, कितनी चीजों को हटाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्ची अपने मन को बदलो, मन को ज्ञान का अंकुश दो। तीसरा एक प्राणी है जिसको हम कहते हैं हिरण। हिरण को शब्द से बहुत प्यार होता है, तो शिकारी क्या करता है कि ढोलक बजाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, थोड़ी भी आवाज हो जाएगी तो वो खड़ा हो जाएगा। मान लो आप जंगल में से गुजर रही हैं और आपकी गाड़ी या बस जा रही है और इधर हिरण का झुंड जा रहा है, तो गाड़ी में अगर हॉर्न भी बजेगा ना तो हिरण उसको सुन करके खड़ा हो जाएगा, उसको शब्द से बहुत प्यार होता है। तो शिकारी क्या करता है, ढोलक बजाता है और हिरण खड़ा हो जाता है, तो फिर क्या करता है शिकारी, खड़े हिरण को तो तीर मारना सरल है, भागते हुए को मारना तो सरल नहीं था। तो हिरण क्यों चंगुल में फंसा? शब्द के आकर्षण के कारण, कानों का आकर्षण। तो बाबा भी हमको कहते हैं कि बच्चे व्यर्थ मत सुनो, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। इसलिए कोई गलत काम करता है तो क्या करते हैं, उसका कान पकड़ते हैं और कुछ नहीं पकड़ते, क्या पकड़ते हैं कि भाई तुम ना गलत सुनो, क्योंकि गलत सुनने से टाइम वेस्ट होता है, गलत सुनने से मन में शंकाएं पैदा होती हैं, गलत सुनने से मन मुटाव पैदा होता है, गलत सुनने से संशय आता है। तो सुनेंगे नहीं, कान पकड़ लिया, हम गलत सुनेंगे नहीं, बस सारी बुराइयों के दरवाजे बंद हो गए। और चौथा जीव है मछली। मछली को पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, कांटे में आटा डाल देते हैं और मछली को टेस्ट आता है, जीभ का स्वाद। वो ये नहीं देखती कि मेरे से पहले वाली मछली का क्या हुआ, नहीं, बस वो जीभ आके आकर्षण में खिंची जाती है और कांटे में फंस जाती है। जीभ के ऊपर टेस्ट कितनी देर रहता है, अगर आप सही गिनती करें कभी चीज जीभ के ऊपर रख करके, तो देखना 2-2.5 सेकंड से ज्यादा कोई भी चीज जीवा पे टिकती नहीं। लेकिन इतनी देर के सुख के लिए आदमी पेट को कितनी देर की तकलीफ देता है, मछली का तो जीवन ही चला जाता है, लेकिन आदमी बड़ा है, चलो छोटी मोटी चीज खा ले तो जीवन तो नहीं जाता, पर तकलीफ किसको होती है, पेट को होती है। तो बाबा ने कहा बच्ची मुख से दो काम होते हैं, एक बोलने का और दूसरा खाने का, इसलिए दोनों के ऊपर नियंत्रण। खाने से पहले भोग तो लगाओ ही, लेकिन खाने से पहले ये भी अपने से पूछो कि ये मेरी गाड़ी के अनुकूल है। अगर अपन पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दें तो क्या होगा? तो मेरा बाबा की साधना के लिए इतना सुंदर ये मंदिर है, इसमें मैं जो डाल रहा हूँ वो इसके अनुकूल है, ये भी अपने से पूछना है। और पांचवा जीव है हाथी। हाथी को भी लोग कैसे पकड़ते हैं, स्पर्श का आकर्षण होता है हाथी को, तो एक बड़ा सा गड्ढा बनाती हैं और इस गड्ढे के ऊपर लकड़ियां घास फूस बिछा देते हैं, तो हाथी को लगता है कि ये जमीन ही है। और दूसरी तरफ एक कागज की बनी हुई हथिनी का चित्र रख देते हैं, तो हाथी उस गड्ढे के ऊपर पांव रखता है और गड्ढे के अंदर चला जाता है। इतने बड़े हाथी को जिसको कई लोग भी नहीं पकड़ सकते, उसको पकड़ना कितना सरल है उसकी कमजोरी के कारण। तो बाबा भी हमें कहते हैं, बच्चे इंद्रियातीत बनो, इनको जीतो, आप इनके मालिक हो। आत्मा तो राजा है ना, ये जिसको जो आदेश देगी उसको वो आदेश पूरा करना पड़ेगा। कहती हैं कि किसी राजा के 5 नौकर हों, ये बात तो जचती है। एक राजा है और उसके 5 नौकर हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक नौकर और उसके 5 मालिक, ऐसा कभी सुना? और अगर ऐसा हो जाए तो क्या हाल हो? आत्मा बिचारी अकेली नौकर और उसके मालिक 5 इंद्रियां, तो क्या हाल होगा उस आदमी का? और आज की दुनिया में यही हो रहा है। लेकिन प्यारे बाबा ने हमको अपना मित्र बना दिया और इस दलदल से निकाल दिया, अब तो हम मालिक हैं और सब हमारे आदेश का पालन करते हैं, है ना? ऐसा मालिक है ना हम सभी? आज भी इंद्र हैं और भविष्य में भी इंद्र हैं। जैसे बाबा हमको कितने नाम देता है, तो उसमें ये भी हमारा नाम है। बाबा कहते हैं, बच्चे आप की लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं है, आपकी लड़ाई भीतर ही भीतर है, अंदर ही अंदर है, संकल्पों के साथ है। ये गुप्त लड़ाई है, ये किसी को दिखाई नहीं देती है। और जो इस गुप्त लड़ाई पर जीत पाता है वही सच्चा विजयी है। और ये दिन रात चलती है, स्वप्न में किसी को वैसे कोई धोखा नहीं देगी इंद्री, लेकिन अगर स्वप्न में भी धोखा देती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब और पुरुषार्थ की जरूरत है अभी। इसलिए जो आत्मा अपना मित्र है वो एकांत में बैठेगी और एक एक इंद्री का हालचाल पूछेगी कि तूने सारा दिन हजारों लोगों को देखा लेकिन क्या देखा? ये आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है, मेरा भाई है, रंगमंच के ऊपर पार्ट प्ले कर रहा है और सतयुग में भी ये मेरा साथी बनेगा। ये 5 बातें आत्मा को देख करके याद आई। अगर ये बातें याद आई तो समझो मैं अपना मित्र हूं, मैंने उसको ठीक दृष्टि से देखा। बोलते समय मैं, बाबा कहते हैं महान आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं, तो मैं महावाक्य बोल रहा हूं, भगवान वाच बोल रहा हूं, भगवान के बच्चे के साथ बोल रहा हूं। और मैं बोल के द्वारा पुण्य का खाता जमा कर रहा हूं। अगर ये याद आया तो समझो हमने अपने बोल को सफल किया। तो सारा दिन हम इनसे जमा का खाता या घटा का खाता, कौन सा खाता बना रहे हैं, ये हमको चेकिंग करनी। बाबा ये भी कहते हैं कि अगर हर घड़ी चेकिंग करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा निकलेगा। कुछ दिन पहले एक जगह कहीं पे बहुत रश था, तो मैंने पूछा कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कहा कि जिन लोगों को गाड़ी, जिन लोगों ने गाड़ी चलानी सीखी है उनको ये लाइसेंस दे रही हैं, और जिनका पुराना हो गया उसका रिन्यूअल भी हो रहा है। तो एक प्रकार से प्यारा बाबा भी हमको शरीर रूपी गाड़ी और इंद्रियों को चलाने का लाइसेंस देता है। ये ज्ञान क्या है? शरीर और इंद्रियों को चलाने का लाइसेंस प्राप्त करना। तो अभी हम मालिक बन के बैठेंगे, ओम शांति। तो बाबा हम बच्चों को लाइसेंस दे रहे हैं, और दुनिया वाले अपनी गाड़ी को बिना लाइसेंस के चलाते हैं, तो रिजल्ट क्या निकलता है? कभी ये एक्सीडेंट, कभी वो एक्सीडेंट, कभी यहाँ दुख, कभी वहाँ दुख, कभी यहाँ चिंता, कभी वहाँ चिंता, इसी को तो एक्सीडेंट कहेंगे ना। और बाबा ने हमको लाइसेंस दे दिया, सिखा दिया कि बच्चे आत्मा ड्राइवर हैं और शरीर और इंद्रियां इनको संभाल के चलाना है। तो मालिक बन के चलाएंगे माना लाइसेंस मिल गया, और अगर शरीर बन के चलाएंगे माना रद्द हो गया। तो हमको बाबा ने परमानेंट दे दिया। आज बाबा ने वरदान में मैं की बात सुनाई, मैं नहीं करना, हर बात में याद रखना कि बाबा करवा रहा है। बाबा कहती हैं बच्ची दो बातें याद रखो, एक तो मैं आत्मा इंद्रियों के द्वारा करवा रही हूँ। जैसे हम सेवा करते हैं, मान लो अनाज साफ करते हैं, सब्जी काटते हैं, रोटी बेलते हैं, पहरा देते हैं, या कुछ लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस समय आत्मा करावनहार और इंद्रियां करनहार, क्योंकि आत्मा मालिक बन करके करवा रही है। लेकिन फिर बाबा कहते हैं इससे एक दूसरा, इसमें भी कहीं आत्मा को ये ना आ जाए कि मैं करवाती हूं, इसलिए एक और बाबा ने सुंदर बात सुनाई कि आत्मा से भी करवाने वाला कौन? शिव बाबा। तो फिर बाबा करण करावनहार और मैं आत्मा करना, और शरीर और आत्मा के संबंध में मैं आत्मा मालिक करावनहार और इंद्रियां करनहार, ये डबल लॉक हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्ची निमित्त बन करके हर कर्म करो, निमित्त को मैंपन नहीं होता, किसके आदेश से मैं कर्म कर रहा हूं उसको वो याद रहता है, और उस कर्म की अच्छाई बुराई निंदा स्तुति हानि लाभ वो करवाने वाले पे अर्पण कर देता है। लाभ हुआ तो भी उसका, नुकसान हुआ तो भी उसका, निंदा मिली तो भी उसकी, स्तुति मिली तो भी उसकी, इसलिए वो हल्का रहता है, प्रभावित नहीं होता है। तो अभी आधा घंटा आप सबको योग का अभ्यास करना है, हम इसी स्थिति में बैठेंगे, आप महसूस करना, जैसे हमने बात की थी कि चंद्रमा के चारों ओर प्रकाश होता है और सूर्य के चारों ओर भी प्रकाश होता है, तो ऐसी मैं प्रकाशित आत्मा हूं, जब चाहूं इस शरीर रूपी डाली पे आके बैठूं और जब चाहूं इस डाली को छोड़ करके उड़ जाऊं, लेकिन मेरा जो मूल स्वरूप है वो वैसा ही प्रकाशमान है, दिव्य है, अलौकिक है, मैं हूं प्रकाश, लेकिन इस डाली के ऊपर या शरीर रूपी आवरण के साथ मेरा टेम्परेरी रिश्ता है, पर मेरा असली रूप वही है। तो इसका हम बार बार अभ्यास करेंगे, और अपने संकल्पों को देखना कि इस अभ्यास में वो कहाँ कहाँ जा रही है, और उनको वापस लौटा के लाना, मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, अविनाशी हूँ, ये बार बार पक्का अभ्यास करना। अगर आपने इस अभ्यास में अनुभव किया तो जब आप इस होल से बाहर निकलेंगे तो भी आप उसी शांति की अवस्था में, उसी अनुभूति की अवस्था में, उसी न्यारी अवस्था में, अलौकिक अवस्था में रहेंगे। और एक बार आपने ऐसा सुंदर अनुभव किया तो आज सारा दिन वो अनुभव आपके साथ रहेगा। इसलिए जब जब हम योग में बैठें तो कोई ना कोई नया अनुभव करने का लक्ष्य रखें। साधारण रीति से तो अपन चलते फिरते भी योग कर सकते हैं, लेकिन बैठने का मतलब क्या है कि हमको कुछ गहन अनुभव करना है, कुछ ऐसी मन के अंदर नई झलक पैदा करनी है जो बाहर निकलने के बाद माना सारा दिन मेरे अस्तित्व के ऊपर वो छाई रही, मैं उसको भूलू नहीं। तो ऐसा अनुभव हम अभी करेंगे, बहुत प्यार से बैठेंगे क्योंकि बहुत प्राण प्रिय बाबा को हम याद करने जा रहे हैं। ये हमारी बहुत ऊंची कमाई है तो इसलिए बहुत फ्रेश होके और बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे।
मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। समाचार पूछे सजग संतरी से,
समाचार पूछे सजग संतरी से,
बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाए। बड़ा न्यायकारी मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी,
राजा भी राजी सुखी जनता सारी,
सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाए।